हवेली, आर्यन का कमरा, वही शाम। कमरे में हल्की सी शांति थी। खिड़की के बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ सरसराती थीं। टेबल लैंप की पीली रोशनी किताब के पन्नों पर ठहर गई थी। आर्यन कुर्सी पर बैठा किताब में डूबा हुआ था। चश्मा नाक पर थोड़ा खिसका, भौहें सिकुड़ी हुई, जैसे हर लाइन को पकड़कर समझ लेना चाहता हो। और उसके ठीक सामने अदिति, बिस्तर पर अधलेटी, पैर हवा में हल्के हल्के हिलाते हुए। नजरें किताब पर नहीं, आर्यन के चेहरे पर थीं। वो कुछ देर उसे बस देखती रही, फिर बोली, तुम्हें पता है, तुम पढ़ते हुए काफी सीरियस लगते हो। आर्यन ने नजर उठाए बिना कहा, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा हूं। अदिति ने आंखें घुमाई, हद। वो उठकर धीरे धीरे उसके पास आई, टेबल के किनारे टिक गई। इतनी देर से पढ़ रहे हो, उसने शिकायत सी की, अब तो ब्रेक बनता है। आर्यन ने पन्ना पलटा, अदिति यार बहुत हो गया, तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? अदिति ने तुरंत जवाब दिया, अरे मेरा भी घर है ये, मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं। आर्यन ने सिर उठाकर देखा, हर बात में मर्जी? हां, अदिति मुस्कुराई, खासकर इस बात में। वो उसके कंधे के पास झुकी, इतनी पास कि आर्यन को उसकी सांसें महसूस होने लगीं। क्या कर रहे हो? अदिति ने जानबूझकर पूछा। पढ़ रहा हूं, आर्यन बोला, पर आवाज में अब वो पहले जैसी सख्ती नहीं थी। अदिति ने किताब पर उंगली रख दी, अब नहीं। आर्यन ने उसकी उंगली हटाने की कोशिश की, अदिति प्लीज, अभी नहीं। अदिति ने उसकी तरफ देखा, आंखों में वही शरारत, वही नजदीकी। तुम हर बार ऐसे ही भागते हो, वो बोली। मैं भाग नहीं रहा, आर्यन ने कुर्सी पीछे की, बस मैं सहज नहीं हूं। अदिति ने मुस्कुराकर दो कदम आगे बढ़ाए। अजीब हो, उसने कहा, मंगनी हो चुकी है फिर भी ऐसे। आर्यन ने उठकर थोड़ी दूरी बना ली। अदिति, उसने धीरे कहा, ऐसे मत करो। कमरे में एक हल्का सा तनाव भर गया। अदिति कुछ पल उसे देखती रही, फिर कंधे उचका दिए। ठीक है, उसने कहा, जैसे तुम चाहो। वो वापस बिस्तर पर बैठ गई, पर उसकी आंखें अब भी उसी पर थीं। आर्यन ने राहत की सांस ली, कुर्सी पर फिर बैठ गया, किताब उठाई, पर मन अब किताब में नहीं था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्यन, श्यामली की आवाज आई। आर्यन तुरंत सीधा हो गया। श्यामली, दरवाजा खुला। श्यामली हाथ में ट्रे लिए अंदर आई, ट्रे में स्नैक्स और चाय थी। सोचा कुछ खा लो, उसने कहा। अदिति ने मुस्कुराकर थैंक यू श्यामली कहा। श्यामली की नजर दोनों पर गई, कमरे की हवा उसे कुछ अलग लगी। आर्यन ने अचानक अदिति का हाथ पकड़ लिया। श्यामली के सामने उसका ये बर्ताव एकदम बदल गया। आओ, आर्यन ने कहा, यहां बैठो। अदिति चौंक गई पर मुस्कुरा दी। आर्यन ने उसे अपने पास खींच लिया, बहुत दिखावे के साथ, बहुत जानबूझकर। श्यामली की आंखें एक पल को ठहर गईं। उसने ट्रे टेबल पर रखी। चाय गर्म है, वो बोली, आवाज में नरमी थी पर भीतर कुछ चुभा। आर्यन ने अदिति की तरफ देखा और जैसे श्यामली को दिखाने के लिए उसने और करीब कर लिया। अदिति समझ गई पर कुछ नहीं बोली। श्यामली ने एक पल दोनों को देखा, फिर खुद को संभाल लिया। ठीक है, उसने कहा, मैं बाहर हूं। वो पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने हाथ छोड़ दिया। अदिति ने उसे देखा, धीरे से कहा, ये क्या खा? आर्यन ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, अदिति ने हल्की हंसी हंसी, कुछ तो था। बाहर गलियारे में श्यामली कुछ पल खड़ी रही। उसने गहरी सांस ली, मन में हल्का सा दुख आया, पर उसने उसे वहीं रोक दिया। उसने खुद से कहा, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। कमरे के भीतर अदिति और आर्यन खामोश बैठे थे और इस खामोशी में तीनों के दिल अपने अपने सवालों से जूझ रहे थे। विश्वनाथ का कमरा, वही दोपहर, थोड़ी देर बाद। श्यामली के जाते ही कमरा फिर से शांत हो गया था। लैपटॉप बंद पड़ा था पर दिमाग अभी भी खुला हुआ था। विश्वनाथ ने दवाई की शीशी उठाई, दो गोलियां हथेली पर रखी, पानी का घूंट भरा और उन्हें निगल लिया। दवाई का असर धीरे धीरे नसों में उतरने लगा। सिर भारी हुआ, पलकों में अजीब सी नमी भराई। वो कुर्सी से उठा, बिस्तर पर बैठ गया, पीठ तकिए से टिकाई। बस 5 मिनट, उसने खुद से कहा, लेकिन वो 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। हल्की नींद, नींद गहरी नहीं थी, बस वैसी जैसी शरीर को बहलाती है, दिमाग को नहीं। कहीं दूर किसी आवाज का एहसास, किसी परछाई की मौजूदगी, पर कुछ साफ नहीं। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरा वही था, रोशनी वही, पर कुछ बदल सा गया था। खामोशी अब खाली नहीं लग रही थी। उसने उठकर चारों तरफ देखा। श्यामली, आवाज हल्की थी पर बेचैनी साफ। कोई जवाब नहीं। उसने घड़ी की तरफ देखा, ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था, फिर भी सीने के अंदर एक हलचल सी होने लगी। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया, हथेलियां घुटनों पर टिक गईं। वो कहां चली गई, उसने खुद से पूछा, फिर तुरंत भौहें से कुड़ी। रुको, मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, उसने गहरी सांस ली। ये ठीक नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग खुद को समझाने लगा। हमारे बीच एक रिश्ता है, हाँ, पर वैसा नहीं, हम पति पत्नी हैं, नाम के, जिम्मेदारी है, आदत है, बस। वो थोड़ा हंस पड़ा, खुद पर, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं, पर दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। बेचैनी, वो उठा, दो कदम चला, फिर रुक गया। कमरे में श्यामली की मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी, उसकी खुशबू हल्की सी जैसे किसी कपड़े पर रह गई हो। विश्वनाथ ने अचानक सिर झटका, बेवकूफी, सिर्फ दवाई का असर है। वो फिर बिस्तर पर बैठ गया, उंगलियां अनजाने में चादर पर लकीरें खींचने लगी। उसी वक्त छन छन, बहुत हल्की आवाज, जैसे किसी के कदम कमरे की तरफ बढ़ रहे हों। विश्वनाथ का सिर अपने आप उठ गया, छन छन, पायल। उसकी सांस अनजाने में रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला, श्यामली की एंट्री। श्यामली अंदर आई, हाथ में सूखे कपड़ों का ढेर, विश्वनाथ के, अभी अभी रस्सी से उतारे हुए। उसके बाल खुले थे, लंबे, घने, थोड़े से लहराते हुए। उसने साड़ी ठीक से नहीं पकड़ी थी, पल्लू कंधे से थोड़ा सा ढलका हुआ। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर नर्म सी छाया बना रही थी। विश्वनाथ बस देखता रह गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि अगर कोई देखता तो शायद नजरअंदाज कर देता, पर वो मुस्कान सच्ची थी। नजरें, श्यामली ने दरवाजा बंद किया, उसकी नजर सीधे विश्वनाथ पर नहीं गई, वो पहले अलमारी की तरफ बढ़ी, पर चलते चलते एक पल के लिए उसकी नजर उठी और विश्वनाथ की नजर से टकरा गई। बस एक पल, पर उस पल में बहुत कुछ अनकहा गुजर गया, ना कोई सवाल ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सी खामोश खिंचाव। विश्वनाथ ने नजर नहीं हटाई और श्यामली ने भी नहीं। फिर श्यामली ने नजर झुका ली, लेकिन उसकी चाल में हल्का सा ठहराव आ गया, जैसे उसकी देह कुछ महसूस कर चुकी हो जिसे दिमाग अभी नाम नहीं दे पाया, बॉडी लैंग्वेज। वो अलमारी तक पहुंची, दरवाजा खोला, कपड़े अंदर रखने लगी। उसके हाथ सलीके से काम कर रहे थे, पर उसकी गर्दन, उसकी पीठ, उसके कंधे सब सजग थे। विश्वनाथ अब भी बिस्तर पर बैठा था, पर उसकी मुद्रा बदल चुकी थी, पीठ सीधी, कंधे हल्के से तने हुए। उसकी नजर अब भी श्यामली के खुले बालों पर ठहरी थी, बाल जब जब उसकी पीठ से टकराते विश्वनाथ की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बनने लगती। उसने गला साफ किया कुछ कहने के लिए, पर शब्द आए ही नहीं, खामोशी का दबाव। कमरे में एक भारी सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं, बेचैनी लाती है। श्यामली ने आखिरी कपड़ा रखा, अलमारी बंद की, फिर मुड़ी। अब वो पूरी तरह उसके सामने थी, दोनों के बीच फासला था, पर बहुत कम, इतना कि हवा भी रुक कर गुजरती। श्यामली ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बहुत कुछ पूछ रही थीं। विश्वनाथ ने होंठ खोले, फिर बंद कर लिए। उसके सीने में दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, वो खुद से नाराज हुआ। ये गलत है, उसके दिमाग ने कहा, पर शरीर अपनी ही भाषा बोल रहा था, अनकहा आकर्षण। श्यामली ने हल्की सी सांस ली, वो सांस सीधे विश्वनाथ तक पहुंची। उसकी खुशबू अब और तेज महसूस हुई। एक पल को ऐसा लगा अगर वो हाथ बढ़ाए तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, बस नजरें थोड़ी देर और उलझी रहीं। फिर श्यामली ने धीरे से कहा, आप आराम करिए। आवाज सामान्य थी, पर उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। विश्वनाथ ने सिर्फ सिर हिलाया, हाँ, एक शब्द, पर उस शब्द में बहुत कुछ दबा हुआ था, अंत का ठहराव। श्यामली पीछे मुड़ी, चलने लगी, पायल फिर छनछनाई, दरवाजा खोला, एक पल के लिए रुकी, पीछे नहीं देखा, फिर बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ, कमरा फिर खामोश हो गया, पर अब
वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। विश्वनाथ वहीं बैठा रहा काफी देर तक, उसके होठों पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी जिसे फिर से किसी ने नहीं देखा।